मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 14 मई 2018 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और अपनी पूरी टीम के साथ बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत भी करता हूं। आज सोमवार है और सामान्यतया सोमवार को हम लोग किसी महान सफल व्यक्ति के जीवन का एक प्रसंग लेते हैं या यूं कह लीजिए कि कोई एक घटना लेते हैं। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति महान ही हो, कोई ऐसी घटना भी हो सकती है जो असफल हुई हो। शिक्षा दोनों से ही मिलती है, सफल घटनाओं से भी और असफल घटनाओं से भी, लेकिन उसकी मैं चर्चा करूं इससे पहले फ्रेंड्स आप सबके सामने एक सफाई पेश करना चाहूंगा और यह सफाई मुझे लगता है कि अब पेश करना मेरे लिए थोड़ा सा जरूरी सा हो गया है। वो इसलिए कि अभी मैंने जो भी थोड़ी कुछ घटनाएं आप लोगों के सामने रखी हैं, जैसे मैंने नेपोलियन बोनापार्ट की बात की थी और जो भी घटनाएं रखी हूं, मेरे पास कुछ मेल बार बार आ रहे हैं और उसमें इस बात का आग्रह किया जा रहा है, काफी दबाव डालकर आग्रह किया जा रहा है कि मैं विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे जो हमारे महान पुरुष हुए हैं उनकी जीवनी के बारे में बताऊं। पहली बात तो यह है कि आपकी यह जो जिज्ञासा है, आपका यह जो सजेशन है, सर्वमान्य बिल्कुल बताया ही जाना चाहिए, लेकिन मेरी सोच यहां थोड़ी सी दूसरी है। मैं अपनी पहले वो सोच आपके सामने, आप सबके सामने पेश करना चाहूंगा और मैं ये भी चाहूंगा कि आप सब इस पर विचार भी करें। दो नाम सबसे ज्यादा आ रहे हैं, विवेकानंद और महात्मा गांधी। ये दोनों हमारे प्रातः स्मरणीय पुरुष हैं, प्रातः स्मरणीय, जिन्हें सुबह उठ उठ करके हमें उसी तरह से जिनका स्मरण करना चाहिए जैसे कि हम ईश्वर का स्मरण करते, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर मुझे लगता है कि अगर सच में हम इन्हें प्रातः स्मरणीय मानते हैं, ये हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश में रहे हैं और अभी के हैं, अभी के हैं, सन 1900 के आसपास के हैं, यानी कि हम इनके साथ हैं या ये हमारे बीच के हैं, हम ही हैं, राइट? तो क्या आपको नहीं लगता मित्रों कि हमें इनके बारे में तो बिना बताए ही जानना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर इनके बारे में मैं आप सबको कुछ बताऊं तो शायद मैं आप सबका मूल्यांकन कुछ ज्यादा गलत कर रहा हूं, ज्यादा आप लोगों को कुछ सीमाओं में बांध रहा हूं। जो हमारे बीच के रहे हैं, अभी के रहे हैं, जिनका हमारी चेतना पर, हमारे देश पर, हमारे समाज पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, जो हमारी चेतना के अभिन्न अंग बन चुके हैं, क्या उनके बारे में हमें नहीं जानना चाहिए? और वो भी तब जबकि हम पढ़े लिखे हैं, या तो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, और अगर हम पढ़े लिखे नहीं भी हों तब भी गांधी और विवेकानंद के बारे में जानना तो मुझे लगता है कि हमारा फर्ज ही नहीं बल्कि हमारा धर्म बनता है। और जानने का मतलब यह नहीं कि केवल हम नाम जान रहे हैं और उनकी जन्मतिथि जान रहे हैं और पुण्यतिथि जान रहे हैं, नहीं, उनकी जीवनी जान रहे हैं, उनके जीवन को जान रहे हैं। क्योंकि जब तक उनके जीवन को हम नहीं जानेंगे, आप मुझे बताइए कि हम उनसे क्या लाभ ले सकेंगे, अपने जीवन में हम उनको शामिल कैसे कर सकेंगे। हमें मालूम होना चाहिए कि इनके जीवन ने किस तरीके से शेप लिया है, इनके सामने भी संकट आए, परेशानियां आई, कैसे उन्होंने उसको पार पाया है, किस तरह का इन्होंने संघर्ष किया है, इनके क्या आदर्श रहे हैं, क्या सिद्धांत रहे हैं, क्या क्या इन्होंने काम किए हैं और कैसे काम किए हैं, और तब हम समझ पाएंगे कि अच्छा, इसलिए ये हमारे प्रातः स्मरणीय हैं, तब तो हमारी समझ में आएगा ना। तो ये तो हमें जानना ही चाहिए। तो अब आप ये बताइए कि जो चीज आपको जाननी ही चाहिए, अगर उसके बारे में ही मैं आपको जनवा रहा हूं, कह लीजिए बता रहा हूं, तो आपको नहीं लगता है कि मैं फालतू का काम कर रहा हूं? ठीक इसी तरीके से अब आप इसको दूसरे रूप में सोचिए कि यदि मैं कोई और नई चीज आपको बताऊं तो बट नेचुरल है कि वो आपके लिए एक तो नई होगी, दूसरा आपके ज्ञान का विस्तार भी होगा, आपके प्रेरणा के डायमेंशंस भी अलग अलग होंगे और आप जीवन को अलग अलग कोण से देख और समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसे हिस्सों को लेना चाहिए जिनके बारे में सामान्यतया की मैं बात कर रहा हूं, हम अनजान से हैं, ताकि हमारा और अधिक विस्तार हो सके। तो मित्रों, ठीक है, मुझे कभी कोई नए प्रसंग मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली गांधी जी और विवेकानंद जी और भी जो दूसरे हमारे महापुरुष हुए हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यह लगता है कि ऐसा करके मैं कहीं ना कहीं आप लोगों की जो समझ और जो ज्ञान और जो अध्ययन है उसको सीमाओं में बांध कर देख रहा हूं, मुझे ऐसा महसूस होता है। मित्रों, इनके बारे में तो आपको जानना ही चाहिए और प्लीज जाने, तो इसलिए मैंने कहा कि आपकी जो इच्छा है ये सर माथे है, लेकिन इसको आप दूसरे माध्यमों से भी पूरा कर लें, क्योंकि दूसरी जो मैं आपको बता रहा हूं वो जनरली सामान्यतया बहुत लोकप्रिय तरीके से और सामान्य तरीके से अवेलेबल नहीं होती है, तो इसलिए मैं उनकी चर्चा आपके सामने करता हूं। राइट, मित्रों आइए अब मैं आपके सामने एक घटना की चर्चा कर रहा हूं। ये जीवन की बात नहीं है, एक घटना की बात है और घटना में जीवन होती है ना, घटनाओं का भी अपना जीवन होता है। याद रखिए, जीवन में घटनाएं होती हैं और घटनाओं का भी अपना जीवन होता है, घटनाएं मृत नहीं होती हैं, क्योंकि हर घटना के पीछे कोई ना कोई जैविक शक्ति काम कर रही होती है। और ये घटना है मित्रों पनामा नहर के बनने की, पनामा कैनाल। हाँ, पनामा नहर के बारे में आपने सुना होगा, दो नहरें बड़ी प्रसिद्ध हैं विश्व में, एक पनामा नहर और दूसरी स्वेज नहर। इसमें पनामा नहर पहले की है और मजेदार बात यह है कि पनामा नहर की जो शुरुआत हुई थी उसकी तिथि वह है जो हमारे देश की आजादी की तिथि है, 15 अगस्त। यह बात अलग है कि वर्ष उसका बहुत पहले है, हमसे 43 साल पहले 1914 में पनामा नहर बनकर के तैयार हुआ था। और आपको मालूम है कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये जो प्रशांत महासागर है, जो पैसिफिक ओशन है और जो अटलांटिक महासागर है, इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। और 77 किलोमीटर ये नहर है जो मनुष्य ने बनाया है। सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई नहर है, और नहर तो मनुष्य ही बनाता है, नदी को नहीं बनाता। और इससे जो जो दूरी थी खासकर अमेरिका के ईस्ट की से लेकर के वेस्ट की, बहुत ज्यादा कम हो गई थी। और ये मनुष्य का जो श्रम है उसका एक अद्भुत उदाहरण है कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता। जैसे माझी पहाड़ तोड़ सकता है, कुछ उसी तरह की घटना यह भी है। तो आइए मैं एक केवल घटना आपको सुना शायद पाऊंगा और उस अर्थ भी आप निकाल लेंगे, बहुत सरल सा है। मैं जो मैंने लिखा हुआ है मैं आपको उसे ज्यों का त्यों पढ़ दे रहा हूं, है ना, ये मैंने नोट किया हुआ है, मैं उसे उसी भाषा में उसी अंदाज में आपसे पढ़ रहा हूं। अमेरिका में कर्नल जॉर्ज वाशिंगटन गोएबल्स की बहुत आलोचना हुई जब उन्होंने नहर के निर्माण का काम हाथ में लिया। खराब भौगोलिक स्थितियां, उससे भी खराब मौसम, कई कामगार तो बीमार ही पड़ गए, कई काम छोड़कर भाग गए और कई की मौत हो गई। आलोचक कह रहे थे कि यह काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने अपना इरादा पक्का कर रखा था, काम बंद नहीं किया। उनसे उस दौरान जब भी पूछा जाता कि क्या आप अपने आलोचकों को जवाब नहीं देंगे, तो वे कहते जरूर दूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। लोग पूछते कैसे, तब वे कहते इस नहर का काम पूरा करके। और 15 अगस्त 1914 को पनामा नहर की शुरुआत हो गई और उनके आलोचकों का मुंह बिना कोई जवाब दिए अपने आप ही बंद हो गया। मित्रों, ये एक छोटी सी घटना जो मैंने नोट कर रखी है आपके सामने प्रस्तुत की है। वक्त ज्यादा नहीं है, इसके विश्लेषण के भी मैं समझता हूं कि ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जो सर्वोत्तम प्रमाण होता है आलोचना का, जो सर्वोत्तम जवाब होता है आलोचना का, वह होता है आपका काम। जिस दिन आपका काम पूरा हो जाता है उस दिन दुनिया जो आपकी आलोचना कर रही है, जो आपको लगातार डीमोरलाइज करती रहती है, वह चुप हो जाती है। उन्हें उनके उत्तर मिल चुके होते हैं और यह उत्तर आप अपने जवाब से नहीं देते, अपनी वाणी से नहीं देते, बहस से नहीं देते, अपने काम से देते हैं। तो काम सर्वोत्तम प्रमाण होता है। जब भी आप कोई बड़ा काम करेंगे, मानकर चलिए छोटे मोटे काम तो हम रोज करते ही रहते हैं और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। आप एक भी कोई थोड़ा सा बड़ा काम हाथ में ले लीजिए, आप देखिए, इसीलिए तो वो बड़ा है क्योंकि अब उसे सब देख रहे हैं, इसलिए बड़ा है। और सब देख इसलिए रहे हैं कि क्योंकि उन्हें वो काम कुछ बड़ा लग रहा है, छोटे काम को नहीं देखा जाएगा। जैसे ही आप बड़ा काम लेते हैं, लोग उस पर ध्यान देने लगते हैं, और जब ध्यान देने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपने कोई बड़ा काम हाथ में ले लिया है, तो स्वाभाविक है कि उनकी जिज्ञासा होगी। और अगर उनकी जिज्ञासा हो रही है, वो डाउट उस पर कर रहे हैं, तो उन्हें दोष मत दीजिए। वो अपने ढंग से सही कर रहे हैं क्योंकि वो उस काम का मूल्यांकन अपनी क्षमता के अनुसार कर रहे हैं। उनको लगता है कि यार हम तो इसे कर ही नहीं पाएंगे, तो ये कैसे कर लेगा, तो वो अपनी क्षमता को आपकी क्षमता पर लाद रहे हैं, आपकी क्षमता को बिना जाने। लेकिन आप अपनी क्षमता को खुद जानिए, कम से कम आप तो अपनी क्षमता को जानते हैं, और काम में लगे रहिए बिना जवाब दिए, बिना विचलित हुए। सबसे बड़ी बात है बिना डिमोरलाइज हुए काम में लगे रहिए। जिस दिन काम पूरा हो जाएगा, सभी को अपने अपने उत्तर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चूंकि वक्त हो चला है और इसलिए मुझे अपनी बात यहीं समाप्त करनी पड़ रही है, आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।